एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो थोड़ी कह सकते हैं दिमाग घुमाने वाली।
हाँ नमस्ते, बिल्कुल।
लेकिन बहुत जरूरी भी। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जिसे हम सच या ज्ञान मानते हैं वो आखिर बनता कैसे है।
सही।
किताब है मिशेल फुको की द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान का पुरातत्व।
जी, और ये किताब जैसा आपने कहा पहली नजर में थोड़ी एकेडमिक, थोड़ी भारी भरकम लग सकती है।
हाँ, थोड़ी मुश्किल।
लेकिन इसके अंदर जो आइडियाज हैं वो आज के जमाने के लिए, जहाँ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है चारों तरफ,
बिल्कुल सूचना की बाढ़ है।
हाँ, उस बाढ़ में ये समझना कि कौन सी बात क्यों कही जा रही है, उसके पीछे नियम क्या है, इसके लिए ये किताब एक तरह से लेंस देती है।
एक डिटेक्टिव का चश्मा कह सकते हैं।
हाँ, कुछ वैसा ही, विचारों के पीछे की पड़ताल करने का।
बिल्कुल। मतलब हम अक्सर ये मान लेते हैं ना कि ज्ञान तो बस होता है, जैसे सूरज उगता है।
हाँ, दिया हुआ है कहीं।
पर फुको कहते हैं नहीं, ज्ञान को बनाया जाता है, उसे रचा जाता है, और उसके पीछे कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून।
बिल्कुल, एक पूरा सिस्टम होता है।
और ये किताब उन्हीं नियमों की, उन्हीं सिस्टम्स की पड़ताल करती है। तो आज हम कोशिश करेंगे ज्ञान के इन छिपी हुई परतों को थोड़ा कुरेदने की।
हाँ, चलिए शुरू करते हैं। पहले शायद लेखक के बारे में थोड़ी बात कर ले, मिशेल फुको।
हाँ, जरूरी है। कौन थे मिशेल फुको?
मिशेल फुको, इनका जीवन काल रहा 1926 से 1984 तक। ये फ्रांस के थे और 20वीं सदी के शायद सबसे प्रभावशाली और कई बार विवादास्पद भी विचारकों में गिने जाते हैं।
अच्छा।
दार्शनिक थे, इतिहासकार थे, सामाजिक चिंतक थे और पेरिस का जो मशहूर कॉलेज डी फ्रांस है वहाँ प्रोफेसर भी थे।
और उनकी खासियत क्या थी? मतलब किस तरह के काम के लिए वो जाने जाते हैं?
देखिए, फुको की सबसे बड़ी खासियत थी उनका लीक से हटकर सोचना।
अच्छा।
वो ज्ञान, शक्ति और समाज में जो संस्थाएं होती हैं, जैसे अस्पताल, जेल, स्कूल, इनके बीच के जो जटिल रिश्ते हैं उनको खंगालते थे। उन्होंने उन चीज़ों पर सवाल उठाए जिन्हें हम आमतौर पर मानकर चलते हैं, जैसे पागलपन का इलाज या अस्पतालों का सिस्टम या जेलें क्यों हैं। वो हमेशा ये समझने की कोशिश करते थे कि ये संस्थाएं कैसे एक खास तरह का सच या ज्ञान बनाती हैं और फिर उस ज्ञान के जरिए लोगों को नियंत्रित भी करती हैं।
दिलचस्प है। तो फिर दी आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज लिखना उनके लिए क्यों अहम था? ये किताब उनकी बाकी किताबों से कैसे अलग है या जुड़ी हुई है?
ये किताब असल में एक तरह से फुको की अपनी मेथोडोलॉजी है, उनका अपना तरीका,
उनका घोषणा पत्र कह सकते हैं।
हाँ, एक तरह से। देखिए, इससे पहले उन्होंने पागलपन और सभ्यता, क्लिनिक का जन्म जैसी महत्वपूर्ण किताबें लिखी थी।
जी।
उनमें उन्होंने इतिहास को देखने का एक बिल्कुल नया, अपरंपरागत तरीका इस्तेमाल किया था, लेकिन लोगों को, मतलब एकेडमिक्स को भी, वो तरीका पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था।
आलोचना भी हुई होगी।
बहुत, काफी आलोचना हुई। तो इस किताब में फुको मानो अपने औजार खोलकर सामने रख देते हैं।
अच्छा।
वो समझाते हैं कि देखो, मैं इतिहास को या ज्ञान को इस तरह से देखता हूँ, ये मेरे विश्लेषण के पीछे के सिद्धांत हैं, ये मेरा नज़रिया है। तो ये उनकी पिछली किताबों की नींव भी है और उनके बाद के काम, खासकर शक्ति, पावर पर जो उन्होंने काम किया, उसकी ज़मीन भी तैयार करती है।
समझ गया। तो अब आते हैं किताब पर। ज्ञान का पुरातत्व, नाम ही बड़ा अनोखा है। अब पुरातत्व मतलब खुदाई।
हाँ, बिल्कुल।
तो यहाँ ज्ञान की खुदाई का क्या मतलब है?
सवाल बिल्कुल सही है। फुको यही कहते हैं कि जैसे पुरातत्वविद जमीन खोदकर पुरानी सभ्यताओं की परतें निकालते हैं, उनके रहने सहने के तरीके, उनके नियम समझते हैं, वैसे ही हमें ज्ञान के इतिहास को भी खोदना चाहिए, परत दर परत। ये किताब कोई पारंपरिक इतिहास की किताब नहीं है जिसमें हम पढ़ते हैं कि अच्छा, पहले अरस्तु आए, फिर प्लेटो, फिर किसी और ने उनको प्रभावित किया।
हाँ, एक सीधी रेखा जैसी।
बिल्कुल। फुको कहते हैं ये सब बाद में गढ़ी गई कहानियां हैं जो हमें एक झूठी निरंतरता का एहसास कराती हैं।
तो फिर वो क्या करने को कहते हैं? अगर इतिहास सीधी रेखा नहीं है तो कैसा है?
फुको जोर देते हैं असंतुलन या विच्छेद पर, डिसकंटिन्यूटी जिसे कहते हैं।
अच्छा, टूट फूट पर।
हाँ, वो कहते हैं इतिहास में ऐसे मोड़ आते हैं, ऐसी दरारें पड़ती हैं जब सोचने समझने का पूरा ढांचा ही बदल जाता है
अचानक से।
हाँ, कई बार अचानक, नए नियम आ जाते हैं, नई बातें सच लगने लगती हैं, पुरानी बातें एकदम अप्रासंगिक हो जाती है। तो उनकी जो पुरातत्व विधि है वो इन्हीं बदलावों, इन दरारों और उन छिपे हुए गुमनाम नियमों को समझने की कोशिश करती है जो किसी भी जमाने में ये तय करते हैं कि क्या कहा जा सकता है, क्या सोचा जा सकता है और किसे ज्ञान माना जाएगा।
अच्छा, तो ये उस चीज से अलग है जिसे विचारों का इतिहास कहते हैं, जो ये देखता है कि कौन सा विचार कहाँ से आया, किस विचारक ने क्या कहा।
हाँ, फूको उसे चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि महान विचारकों से ज्यादा जरूरी वो नियम है, वो अदृश्य ढांचा है जिसके भीतर रहकर ही वो विचारक सोच या बोल पाते हैं। उनका सवाल ये नहीं है कि अतीत में किसी का क्या मतलब था, बल्कि ये कि वो कौन सी शर्तें थीं, कौन से नियम थे जिनकी वजह से उस समय कुछ बातें कही जा सकीं और उन्हें सच मान लिया गया।
मतलब माहौल क्या था, नियम क्या थे।
बिल्कुल, वो उस पूरे सिस्टम की जांच करते हैं जिसे वो डिस्कोर्सिव फॉर्मेशन कहते हैं।
डिस्कोर्सिव फॉर्मेशन, ये थोड़ा टेक्निकल शब्द लग रहा है।
हाँ, ये फुको की सबसे केंद्रीय अवधारणाओं में से है, पर इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं।
जरूर।
देखिए, किसी भी विषय पर, मान लीजिए अर्थव्यवस्था पर या अपराध पर या सेहत पर, किसी एक खास समय में जो कुछ भी कहा सुना लिखा पढ़ा जाता है उसके पीछे कुछ अलिखित नियम काम कर रहे होते हैं।
अदृश्य नियम।
हाँ, ये नियम तय करते हैं पहली बात कि वस्तुओं का निर्माण कैसे होता है, मतलब किस चीज को मुद्दा माना जाएगा। जैसे 19वीं सदी में पागलपन कैसे एक मेडिकल चीज बन गया जिस पर डॉक्टर बात कर सकते हैं। ये चीज डिस्कोर्स से पहले मौजूद नहीं थी, वो उसके अंदर बनी। दूसरा, वक्ता की स्थितियों का निर्माण, मतलब कौन अधिकार के साथ बोल सकता है।
हाँ, एक्सपर्ट कौन,
एक्सपर्ट कौन है, डॉक्टर कौन बन सकता है, जज कौन बन सकता है, कहाँ से बोलने पर आपकी बात में वजन होगा, क्लिनिक से, कोर्ट से या सड़क से।
सही।
तीसरा, अवधारणाओं का निर्माण, मतलब कौन से कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होंगे, वो आपस में कैसे जुड़ेंगे। जैसे 19वीं सदी की मेडिसिन में लक्षण, ऊतक, घाव, इनका खास मतलब और रिश्ता था।
अच्छा।
और चौथा, रणनीतियों का निर्माण, मतलब उस पूरे डिस्कोर्स का लक्ष्य क्या है, वो किस दिशा में जा रहा है। जैसे अर्थशास्त्र में मर्केंटलिज्म से क्लासिकल इकोनॉमी की तरफ क्यों गए। ये सारे नियम मिलकर एक ढांचा बनाते हैं, एक डिस्कोर्सिव फॉर्मेशन, और यही तय करता है कि किसी विषय पर क्या सोचना और कहना नॉर्मल या सच माना जाएगा उस समय।
बाप रे, तो ये एक तरह का अदृश्य फ्रेमवर्क है जो हमारी सोच को बांधता भी है और दिशा भी देता है।
बिल्कुल, और ये लगातार बदलता भी रहता है।
लेकिन फूको लेखक की मृत्यु की भी बात करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? क्या राइटर, ऑथर जरूरी नहीं?
हाँ, ये भी उनका एक बहुत कह सकते हैं विवादास्पद विचार है।
चौंकाने वाला तो है।
मतलब ये नहीं कि लेखक होते ही नहीं, फूको ये नहीं कह रहे, वो कहते हैं कि हमें लेखक को किसी विचार का एकमात्र जनक या स्रोत मानने की बजाय ये देखना चाहिए कि समाज में लेखक का नाम क्या काम करता है।
अच्छा, उसका फंक्शन क्या है?
हाँ, उसका फंक्शन क्या है। किसी टेक्स्ट पर लेखक का नाम उसे एक पहचान देता है, एक अधिकार देता है, उसे क्लासिफाई करता है। लेकिन असल में वो लेखक भी उसी डिस्कोर्सिव फॉर्मेशन, उसी भाषा, उन्हीं नियमों के दायरे में लिख रहा होता है जो उससे पहले से मौजूद है। तो व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण वो सिस्टम है, वो डिस्कोर्स है जो उसे लिखने या बोलने की जगह देता है, जो उसे संभव बनाता है। विचार हवा से नहीं टपकते, वो एक सिस्टम का हिस्सा होते हैं।
ये तो वाकई सोचने का नजरिया ही बदल देता है। अब एक और मुश्किल से शब्द आता है, बयान या स्टेटमेंट, फ्रेंच में एनोंसे। इसे फूको कैसे देखते हैं? ये सिर्फ एक वाक्य है?
नहीं, सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये फूको के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर समझना थोड़ा मुश्किल है।
हाँ।
बयान फूको के लिए डिस्कोर्स की सबसे बुनियादी, सबसे छोटी इकाई है, लेकिन ये सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है।
तो फिर क्या है?
सोचिए, हवा में तैरते शब्द बयान नहीं बनते। कोई वाक्य या शब्दों का समूह बयान तब बनता है जब वो कुछ शर्तें पूरी करें।
शर्तें? कैसी शर्तें?
जैसे वो किसी खास ज्ञान के क्षेत्र से जुड़ा हो, मान लीजिए एक मेडिकल रिपोर्ट में लिखा वाक्य।
ठीक है।
वो किसी चीज या स्थिति को संदर्भित करें, किसी मरीज की हालत या कोई लक्षण। उसे किसी अधिकृत व्यक्ति या संस्था द्वारा कहा या लिखा गया हो, जैसे डॉक्टर या अस्पताल।
बोलने वाले की पोजीशन भी जरूरी है।
बिल्कुल, और उसका कोई भौतिक रूप हो, लिखा हुआ, बोला हुआ, कहीं दर्ज किया हुआ। तो बयान सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक घटना है, एक एनन्सिएटिव फंक्शन है।
एक घटना मतलब?
मतलब वो कुछ करता है, उसका असर होता है। वो किसी को बीमार घोषित करता है, किसी को अपराधी ठहराता है, कोई नियम लागू करता है। वो दुनिया में फर्क डालता है। वो सिर्फ मतलब नहीं रखता, वो काम करता है।
अच्छा, तो बयान मतलब डिस्कोर्स का एक्शन में आना, प्रैक्टिकल रूप।
हाँ, एक तरह से कह सकते हैं।
और इन सब नियमों, बयानों, डिस्कोर्सिव फॉर्मेशंस, इन सब के पूरे सिस्टम को फुको आर्काइव कहते हैं।
जी,
ये वो लाइब्रेरी वाला आर्काइव तो नहीं है ना, जहाँ पुरानी फाइलें रखी होती
हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। फुको इस शब्द को भी पूरी तरह नया मतलब देते हैं।
क्या मतलब है फिर फुको के आर्काइव का?
फुको का आर्काइव कोई जगह या चीजों का कलेक्शन नहीं है। ये वो पूरा अदृश्य कानून है, वो नियमों का पूरा जाल है जो किसी भी समाज में, किसी भी समय में ये तय करता है कि क्या कहा जा सकता है और क्या सोचा भी नहीं जा सकता।
क्या कहा जा सकता है, उसका कानून।
हाँ, द लॉ ऑफ व्हाट कैन बी सेड। ये ज्ञान की संभावना की शर्तें और सीमाएं तय करता है। ये वो सिस्टम है जो कंट्रोल करता है कि कौन से बयान सामने आएंगे और कौन से गायब हो जाएंगे।
बाप रे, तो आर्काइव एक तरह से अदृश्य संविधान है ज्ञान का।
हाँ, एक बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। और फूको की जो पुरातत्व विधि है, उसका काम इसी आर्काइव का वर्णन करना है कि किसी युग में ज्ञान के नियम क्या थे, उनकी संरचना क्या थी।
तो ये सब समझने के बाद इस किताब से निकलने वाले मुख्य संदेश क्या हुए? अगर हमें कुछ 3-4 बड़ी बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी?
मेरे ख्याल से पहली और सबसे अहम बात है, इतिहास सीधा नहीं चलता, उसमें टूट फूट और बदलाव होते हैं। डिसकंटिन्यूटी।
हाँ, वो सीधी रेखा वाला विचार गलत है।
बिल्कुल, हमें विकास की निरंतरता के बजाय उन विच्छेदों, उन बदलाव के पलों पर ध्यान देना चाहिए जहां सोचने का पूरा सिस्टम बदल गया।
दूसरा पॉइंट क्या होगा?
दूसरा, ज्ञान किसी अकेले जीनियस की देन नहीं है।
लेखक की मृत्यु वाली बात।
हाँ,
ज्ञान एक सामूहिक प्रक्रिया है जो नियमों से बंधी है। वो जो सिस्टम है, वो डिस्कोर्स है, वो व्यक्ति से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। महान विचारक भी उसी सिस्टम के अंदर काम करते हैं।
ठीक है, और तीसरा?
तीसरा, ज्ञान सच्चाई का सीधा प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि एक निर्मित चीज है, एक कंस्ट्रक्शन है।
मतलब सच बनाया जाता है।
हाँ, जिसे हम सच मानते हैं वो भी खास नियमों, ताकतों और डिस्कोर्सिव फॉर्मेशन से तय होता है। फुको ये नहीं पूछते कि अतीत की बातें सही थी या गलत। वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि उन्हें उस समय सच क्यों माना गया था।
ये बहुत महत्वपूर्ण है।
और चौथा?
चौथा,
हर कहा गया शब्द या बयान सिर्फ शब्द नहीं, एक ऐतिहासिक घटना है। उसका वास्तविक असर होता है। वो चीजों को क्लासिफाई करता है, एक्शन लेता है, दुनिया बदलता है।
हाँ, बयान सिर्फ बोल नहीं, काम है।
बिल्कुल। और शायद एक पांचवा भी जोड़ सकते हैं, हमें चीजों की असली शुरुआत या गहरे मतलब खोजने से बचना चाहिए।
मतलब जड़ तक जाने की कोशिश ना करें। हाँ, फूको कहते हैं कि पुरातत्व सतह का विश्लेषण है। वो ये देखता है कि क्या कहा गया, कैसे कहा गया, किन नियमों के तहत कहा गया। वो किसी एक कारण या छिपे हुए अर्थ तक चीजों को रिड्यूस नहीं करता।
सिस्टम का वर्णन करना है, उसे एक्सप्लेन नहीं करना है।
सही, उसकी सकारात्मकता यानी जो वास्तव में था उसका वर्णन करना।
फूको के कुछ विचारों को अगर हम और सरल यादगार वाक्यों में कहना चाहें, कुछ कोट्स जैसा।
हाँ, कोशिश कर सकते हैं। जैसे एक ये हो सकता है, ज्ञान खोजा नहीं जाता, बनाया जाता है।
मतलब सच्चाई कोई पड़ी हुई चीज नहीं है जिसे हम ढूंढ निकालते हैं, बल्कि हम उसे अपने सिस्टम और नियमों से रचते हैं।
बिल्कुल। दूसरा, सवाल ये नहीं कि किसने कहा, सवाल ये है कि कहने के नियम क्या थे।
यानी व्यक्ति से ज्यादा सिस्टम पर ध्यान दो, फोकस बदलो।
जी, और तीसरा, आर्काइव के बारे में, जो कहा जा सकता है उसका भी एक कानून होता है।
ये आर्काइव की परिभाषा हो गई एक तरह से, वो अदृश्य नियम जो हमारी सोच और भाषा की सीमा तय करते हैं।
हाँ, और शायद एक और, बयान के बारे में, हमें बयान का विश्लेषण उसके मतलब से नहीं बल्कि उसके काम करने के तरीके और उसकी शर्तों से करना चाहिए।
वो क्या करता है और कैसे संभव हुआ, ये ज्यादा जरूरी है।
बिल्कुल।
ये सब सुनने में तो बहुत इंटेंस है, अकादमिक भी लगता है। सवाल यह है कि इन बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या इस्तेमाल है, कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन?
अरे बहुत है, बस नजर चाहिए वो वाली।
जैसे?
जैसे मीडिया और राजनीति को देखिए। जब आप कोई टीवी डिबेट देख रहे हो या अखबार पढ़ रहे हो,
हाँ,
तो फूको का चश्मा लगाकर सोचिए, बातचीत के अलिखित नियम क्या हैं, कौन से शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं, विकास, सुरक्षा, अवैध, राष्ट्रवाद।
हाँ, ये शब्द ही तो फ्रेम सेट करते हैं।
बिल्कुल, बहस किन मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रही है, किसे एक्सपर्ट की तरह पेश किया जा रहा है, किसकी आवाज को दबाया जा रहा है, ये सब फूको के विश्लेषण के औजार हैं।
अच्छा, और
प्रोफेशनल पावर को समझने में डॉक्टर, वकील, टीचर, इंजीनियर, हर पेशा एक तरह का डिस्कोर्सिव फॉर्मेशन है। उनकी बात में वजन क्यों होता है? सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके पास जानकारी है, बल्कि इसलिए भी कि वो एक शक्तिशाली सिस्टम के भीतर से बोल रहे हैं जिसके नियम उन्हें अधिकार देते हैं। ये समझने से हमें पता चलता है कि पावर सिर्फ सरकार के पास नहीं होती।
सही बात है, सत्ता हर जगह है।
हाँ, और सामाजिक बदलावों को समझने में भी ये बहुत मददगार है।
कैसे?
फूको का जो विच्छेद या टूट फूट वाला आइडिया है, वो समझाता है कि बड़े सामाजिक बदलाव, जो रेडिकल चेंज होते हैं, वो अक्सर कैसे आते हैं। जैसे आप भारत में हाल के कुछ आंदोलनों को देखिए, #MeToo हो, या किसान आंदोलन, या LGBTQ+ अधिकार आंदोलन। हाँ, इन सब में क्या हुआ? नई भाषा बनी, यौन उत्पीड़न, कृषि कानून वापस लो, प्राइड, नए वक्ता सामने आए, पीड़ित, आम किसान, क्वियर व्यक्ति, उन्होंने पुराने स्थापित डिस्कोर्स को, पुराने नियमों को चुनौती दी। ये डिस्कोर्स का बदलना ही तो है।
ये एक अच्छा उदाहरण है। क्या हम इसे अपने ऊपर, अपनी सोच पर भी लागू कर सकते हैं?
हाँ, और ये शायद सबसे गहरा एप्लीकेशन है।
कैसे?
ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जो विचार हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, वो कितनी हमारी अपनी हैं।
मतलब?
मतलब हमने अपने परिवार से, अपनी शिक्षा से, अपने समाज से, मीडिया से, कौन से सोचने के तरीके, कौन सी धारणाएं, कौन से पूर्वाग्रह बिना सवाल किए अपना लिए हैं।
ये तो डरावना भी है थोड़ा।
है, लेकिन जरूरी भी है। ये हमें अपनी स्वाभाविक लगने वाली सोच पर सवाल उठाने की हिम्मत देता है। सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि मैं कौन हूँ, बल्कि ये भी बन जाता है कि किन ऐतिहासिक परिस्थितियों ने, किन डिस्कोर्स ने मुझे ऐसा बनाया है जैसा मैं हूँ।
अपनी कंडीशनिंग को समझना।
हाँ बिल्कुल, अपने भीतर के आर्काइव को थोड़ा टटोलना।
तो कुल मिलाकर इस किताब से सबसे बड़ा सबक क्या निकलता है? आपके लिए सबसे अहम बात क्या रही इसे पढ़ते हुए या इस पर बात करते हुए?
मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो चीजें हमें बिल्कुल नॉर्मल, स्वाभाविक, दी हुई लगती हैं, उन पे शक करना कितना जरूरी है।
क्वेश्चन एवरीथिंग।
हाँ, या कम से कम ये पूछना कि ये नॉर्मल बना कैसे। ज्ञान कभी तटस्थ या मासूम नहीं होता, वो हमेशा किसी न किसी सिस्टम, किसी न किसी शक्ति संबंध से जुड़ा होता है। जिसे हम सच मानते हैं, वो हमेशा किसी खास नजरिए, किसी खास आकाइव पर निर्भर करता है। ये किताब हमें ज्यादा सजग, ज्यादा क्रिटिको बनाती है।
सही कहा। और मेरे लिए शायद सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि इतिहास कैसे सीधी रेखा में नहीं, बल्कि टूट फूट और बदलावों में आगे बढ़ता है, और वो महान लोग इतिहास बनाते हैं वाले विचार को फूको कैसे ध्वस्त करते हैं।
हाँ,
ये वाकई दुनिया को, ज्ञान को, यहाँ तक कि खुद को देखने का एक बिल्कुल नया लेंस देता है। बजाय सिर्फ ये पूछने के कि क्या ये सच है, हम ये पूछना सीखते हैं कि किन शर्तों के तहत इसे इस समय सच माना जा रहा है।
बिल्कुल, ये ज्यादा गहरा सवाल है।
द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज यकीनन थोड़ी मुश्किल किताब है, पर यह दिमाग की खिड़कियां खोल देती है।
हाँ, ये सिर्फ नई जानकारी नहीं देती, बल्कि सोचने का एक नया औजार देती है, एक नई विधि।
ये हमें उन अदृश्य धागों को देखने में मदद करती है जिनसे हमारी दुनिया, हमारा ज्ञान, हमारी सोच बुनी गई है।
सही कहा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।